नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते शाश्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन् मामनुभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि वन्देऽनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् साद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय हरे कृष्ण। तो आज परम पावन तिथि है आषाढ़ पूर्णिमा, जो हमारे ब्रज में चार विशेष नामों से जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा आज चतुर्मास का प्रारंभिक दिवस है और इसके साथ आज भगवान व्यास समस्त वाङ्मय को लिपिबद्ध करने के लिए आज के दिन अवतार लिए, और साथ ही भगवान व्यास देव के प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त गुरु वर्ग की आज विशेष रूप से पूजा की जाती है, जो व्यास के प्रतिनिधि हैं। तो यह पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में भी प्रसिद्ध है और गुरु वर्गों के सम्मान के कारण यह गुरु पूर्णिमा के रूप में भी प्रसिद्ध है। और इसके साथ सनातन गोस्वामी, जिनकी आज चैतन्य महाप्रभु के साथ तीसरे मिलन की चर्चा करेंगे, उनके तिरुभाव तिथि है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े व्यक्ति थे, नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम जज थे, सर्वोच्च न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो स्वभाव से व्यक्ति जो कुछ अपने जीवन में करता है उसका संस्कार बन जाता है, अपने कर्मों का एक संस्कार बनता है, विभिन्न प्रकार के कर्मों का। वह बार बार रिपीटेशन होने के बाद वो संस्कार का रूप लेता है। तो इनका स्वाभाविक संस्कार था लोगों के उचित अनुचित पर विचार करना, उनको समझा देना, किसी को मना लेना। तो ब्रज में जब आ गए सब कुछ त्याग कर, तो ब्रजवासी जब आपस में कलह करते थे, कहीं देख लिए तो क्या हो गया तो कुछ बतलाते थे तो उनको तुरंत समझा देते थे 10-5 मिनट में। मधुकरी करते हुए या ब्रज में घूमते हुए ब्रजवासियों के प्रति इनका महान बुद्धि भगवत परिकर समझकर उनके साथ व्यवहार करते, तो ब्रजवासी इनके प्रति सहज प्रेम करते और इनका भी ब्रजवासियों से सहज लगाव था। तो जब आज के दिन सनातन गोस्वामी का देह पूरा हुआ गोवर्धन में राधा कुंड के तट पर, तो समस्त ब्रजवासी जुटे हजारों की संख्या में और अपना संबंधी समझकर, निकटतम बंधु समझकर अपना सेविंग किए और सनातन गोस्वामी के शव को लेकर गिरिराज की परिक्रमा किए। और उनकी इच्छा थी कि हमारे शव को मदन मोहन के निकट समाधि दी जाए वृंदावन में, तो पैदल ही लेकर वृंदावन आए आज के दिन। तो इसके कारण यह आषाढ़ पूर्णिमा सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के कारण मुड़िया पूर्णिमा के रूप में फेमस हो गया। उनको वार्षिक मनाने लगे, हर साल सिर सेविंग करके और गिरिराज की परिक्रमा करते थे, तो आज भी प्रसिद्ध है मुड़िया पूर्णिमा। ब्रज में आज पूछेंगे क्या है तो मुड़िया पूर्णिमा, 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ही तैयारियां होने लगती है। क्यों? कि सर्वाधिक लोग एकादशी से पूर्णिमा के बीच परिक्रमा करते हैं, करीब करीब 1 करोड़ लोग परिक्रमा करते हैं, आप अनुमान नहीं करते कर सकते। आज के दिन, आज के पूर्व संध्या को अगर आप गिरिराज में चले जाइए, चलना नहीं पड़ेगा, लोग आपको ठेल कर पहुंचा देंगे, इतना भरा रहता है, इतना भरा रहता है। और केवल एक जिला से कंट्रोल नहीं होता है, मथुरा से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, 3-3, 4-4 जिला के SP वहाँ काम करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो, सब व्यवस्थित किया जाता है, सारी व्यवस्थाएं। सर्वाधिक परिक्रमा 4 दिन के अंदर होती है, एकादशी से पूर्णिमा के बीच 4-5 दिन में। तो यह पूर्णिमा प्रसिद्ध हुआ, ये ब्रजवासियों के लिए फेमस है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा ब्रज में जो इस अवसर पर परिक्रमा न करे, सब लोग आना चाहते हैं। तो ये मुड़िया पूर्णिमा के रूप में भी प्रसिद्ध है और मुड़िया पूर्णिमा की कथा है सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के कारण। तो आज हम लोग संयोग से इनके महाप्रभु के साथ 3रे मिलन को सुनेंगे। धैर्य से सुनिएगा, हो सकता है विलम्ब हो जाए, क्योंकि इस अध्याय में 240-242 प्यार है, तो कुछ तो संक्षेप करेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अपने पूर्ण फूल जीवन में केवल 3 बार मिले रूप गोस्वामी महाप्रभु से और 3 बार सनातन गोस्वामी। तो कल तक हम लोग रूप गोस्वामी के 3रा मिलन को सुन लिए हैं, अब सनातन गोस्वामी का महाप्रभु के साथ 3रा मिलन पुरी में। प्रथम बार बंगाल के रामकेली में दोनों भाई साथ में मिले और दूसरे बार रूप गोस्वामी प्रयाग में, महाप्रभु जब वृंदावन से लौट कर आ रहे थे, और सनातन गोस्वामी काशी में। तो प्रयाग में 10 दिन रुक कर महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए, जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें परिच्छेद में है। और काशी में सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर 2 महीना तक उनको शिक्षा दिए, जो मध्य लीला के 20वें से 25वें परिच्छेद तक लगभग 5-6 अध्याय में है। और तीसरे बार रूप गोस्वामी मिलते हैं पुरी में आकर, जो अंत लीला के 1म परिच्छेद में है। और सनातन गोस्वामी का मिलन अंत लीला के 4थे परिच्छेद में। तो एक एक प्यार कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं, इसको हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक को टच किया जाए। वृंदावनात् पुनः प्राप्तम श्री गौरः श्री सनातनम देह पाता दमन स्नेहात् शुद्धम चक्रे परीक्षया। कहते हैं जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पुरी में आए, तो वहाँ आने के बाद एक संकल्प के साथ आए कि जगन्नाथ का दर्शन करूँगा और महाप्रभु का दर्शन करते हुए रथ यात्रा में एक तरफ रथारूढ़ जगन्नाथ, दूसरे तरफ नृत्यत सची कुमार, और इतना सुंदर अवसर पाकर अचानक रथ के नीचे गिर पड़ूंगा और रथ का चक्का मेरे शरीर पर चढ़ेगा, वहीं आत्महत्या कर लूंगा। इस निर्णय के साथ देह पाता दवत स्नेहत, लेकिन इनके इस अभीष्ट को स्नेह बस महाप्रभु नहीं होने दिए। शुद्धम चक्रे परीक्षया, सब कुछ सनातन की शुद्धता की परीक्षा ली गई। एकदम सोना है तो कितने करेक्ट का है, एकदम जांचने के लिए एक विशेष लीला महाप्रभु का। तो इस परिच्छेद में यही वर्णन होगा, सनातन गोस्वामी की परीक्षा, उनकी शुद्धता का जांच, उनके मनोसंकल्प का खंडन। तो जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद, जय गौर भक्त वृंद। नीलाचल हैते रूप गौड़े जब गेला, मथुरा हैते सनातन नीलाचल आईला। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैताचार्य के साथ समस्त गौर भक्तों की जय हो। इसके साथ आगे वर्णन करते हैं कि नीलाचल से जब रूप गोस्वामी महाप्रभु के साथ 10 महीना रुक कर वृंदावन लौटने के लिए गौर होकर प्रस्थान किए, एक बार चलते हैं वहाँ, अनुपम का बेटा 6 साल का है उसको देखते हुए तब लौटते हैं वृंदावन। तो जब वो नीलाचल से गौर के लिए प्रस्थान किए, ठीक उसके तुरंत बाद सनातन गोस्वामी मथुरा से नीलाचल में आ गए। तो झारखंड के पथ से सनातन गोस्वामी आए, राजपथ से नहीं, वन पथ से। झारखंड वन पथे आईला, एकला चलीला, कभू उपवास कभू चरवण करिया। तो वन के पथ से आते थे तो वन के रास्ते में तो बहुत दूर दूर पर गांव मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है, तो भोजन नहीं मिल पा रहा था। कभू दो दो तीन तीन दिन पर कभी कुछ मिल जाता, कुछ चबा लेते चना वना, या कहीं कोई दूध मिल गया या कुछ, कभी उपवास कर लेते। और झारखंड के रास्ते में झरना और नदियों के पानी पीना पड़ता, उसी में स्नान करना पड़ता, इसके कारण जल के दोष से और उपवास के कारण इनके शरीर में खुजली हो गई। केवल ऐसे सूखा खुजली नहीं, घाव के रूप में कंडू बन गया, उसे रस निकलने लगा। गात्रे कंडू हिला रस अब पड़े खजुआई थे, उसमें मवाद भर गया। तो रास्ते में मन निराश हो गए कि पूरी लौटने से पहले ही, और एक दो दिन का पथ नहीं था, पूरा 3 महीना लगता था वृंदावन से पूरी में पहुँचने में। तो पूरा शरीर घाव से भर गया, पानी रखना चाहिए। निर्वेद हैला पथे करे न विचार, नीच जाति देह मोर अत्यंत असार। उनके मन में एक निराशा हुई, उसको ऊपर रखिए। मन में सोचने लगे, निराशा हो गई कि क्या करूंगा पुरी में जाकर, ऐसे ही मैं पामर व्यक्ति अत्यंत नीच जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुस्लिम की नौकरी करने के कारण, उसके जूठा हुक्का पीने के कारण, गोमांस खाने के कारण अपने को मुस्लिम ही मानते थे लोग, तो हमारा तो पुरी मंदिर में प्रवेश होगा नहीं। मान लीजिए कोई अलाउ भी कर दे तो अपना हिम्मत नहीं है अंदर जाने का, जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा और मंदिर के निकट भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ के पुजारी जब आते जाते हैं तो उनसे हमारी छाया पड़ेगा तो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे नहा धोकर पूजा करने जाने वाले पुजारियों पर हमारी छाया पड़ने से वह पवित्र हो जाएंगे, वह उधर भी नहीं रहूंगा। और फिर क्या करूंगा पूरी में, रास्ते सोचे, हमारा शरीर भी खुजली से घाव से इतना व्यस्त है, ठीक से जप भी नहीं हो रहा है, सत्संग भी नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूंगा। तो कहते हैं जगन्नाथ जब रथारूढ़ होंगे, रथ पर चढ़कर बाहर आएंगे, तब देखूंगा दूर से। और उस समय महाप्रभु जब जगन्नाथ के आगे नृत्य करेंगे, तो जगन्नाथ का दर्शन करूंगा रथारूढ़ जगन्नाथ को, और महाप्रभु आगे यार देखी जगन्नाथ रथे देह छाड़ी मोई परम पुरुषार्थ। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि आंख से दर्शन करूंगा, कान से महाप्रभु का शब्द सुनूंगा, कीर्तन महाप्रभु का दर्शन करूंगा, उसी समय मैं रथ के नीचे गिर जाऊंगा। और वो छोटा चक्का नहीं है, 16-16 विशाल चक्का लगा रहता है एक एक रथ में, और वो लोहे से मढ़ा हुआ जब चलेगा मेरे शरीर के ऊपर, तो शरीर छोड़ दूंगा। यही तो निश्चय करी नीला छला आईला, यह निश्चय करके आ गए। और लोके पूछी हरिदास स्थाने उतरीला, लोगों से पूछे कि हरिदास का निवास किधर है, क्योंकि अपना स्टाफ तो वही है, वहीं रहेंगे, ब्राह्मणों के पास तो नहीं रह सकते। हरिदास से कैलते हैं चरण बंदन, जानी हरिदास तारे कैला आलिंगन, परिचय बताए मैं सनातन। तो हरिदास जी उनका आलिंगन किए, और मिलने के बाद कहे महाप्रभु कहाँ मिलेंगे, मैं निकट तो जा नहीं सकता। हरिदास महाप्रभु देखिले देखिते तार उत्कंठित मन, बड़ी उत्कंठा है मन में। हरिदास कहे प्रभु आशिबे ने खन, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे, दिन में एक बार अपना दर्शन देते हैं। हरिदास जी भी मंदिर नहीं जाते थे, दूर से मंदिर के गुंबज पर लहराता हुआ ध्वज देखकर रोज दंडवत करते थे, बस नहीं जाते थे मंदिर। बस उसी समय दोपहर के उपलभोग देखने के बाद महाप्रभु आ गए कुछ भक्तों को लेकर। जब ही आए सनातन को दंडवत प्रणाम किए, लौट गए धरती पर, तो हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार। सनातन देखी प्रभु हिल चमत्कार, अच्छा आ गया सनातन। तो सनातन आलिंगिते प्रभु आगे हिला, पाछे भागे सनातन कही ते लागिल, महाप्रभु दौड़े आलिंगन के लिए, सनातन पीछे भाग रहे हैं। मोर ना छुई हम प्रभु पढ़ो तुम्हार पाए, प्रभु हमको मत छुइए, मैं आपका पैर पड़ता हूँ। क्यों? तो एक नीच जाति अधम आर कंडू रसा गाय, एक तो मैं नीच अधम व्यक्ति हूँ, मेरा स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए, और दूसरे हमारे शरीर में घाव हो गया है, मवाद निकल रहा है, आपके इस सुंदर गौर वर्ण में लग जाएगा, प्रभु मत आलिंगन कीजिए। लेकिन बलत्कार प्रभु तारे आलिंगन कैला जबरदस्ती, कंडू क्लेद महाप्रभु श्री अंग लागिला। महाप्रभु भी बहुत कुर्ता जैकेट पॉकेट नहीं पहनते थे, बस खुला बदन, एक उतरिए कभी कभी ओढ़ लेते थे, कभी वो भी नहीं, गिर जाता था, बस बहिर्वास पहनते और एक उतरिए, तो शरीर में उनका लग गया। और इसके बाद जिन भक्तों को लेकर महाप्रभु आए थे उनसे भी मिलाए, ये है सनातन। इसके बाद हरिदास जी के और सनातन के साथ महाप्रभु बैठे चबूतरे पर, और सनातन और हरिदास नीचे। कुशल वार्ता पूछे, ठीक हो? कुशल वार्ता महाप्रभु पूछे न सनातने, सभी प्यारों को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ का अनुवाद करते चल रहा हूँ। तेहा कहें परम मंगल देखनु चरणे, आज क्या कहना है, आज तो परम मंगल है कि आपका दर्शन हो रहा है, आपका चरण देख रहा हूँ। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछे, ढीला हो गया क्या? तो हनुमान जी से पूछे, हनुमान ठीक हो? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु क्या पूछना है, जब आपका दर्शन कर रहा हूं तो इससे मंगल क्या होगा। विपत्ति या संकट का दिन तो वह होता है जब आपका स्मरण और भजन नहीं होता। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। विपत्ति और संकट का दिन तो वह है जब आपका स्मरण न हो, आपका दर्शन न हो, आज तो कुशल ही है। तो सनातन वही कहे, प्रभु आज तो मंगल है, मैं आपका चरण देख रहा हूँ। महाप्रभु पूछते हैं, मथुरा वैष्णव सबे कुशल पूछिला, मथुरा के भक्त लोग ठीक हैं, सवारा कुशल सनातन जनाइला। तब महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे यहाँ रूप छील दस मास, यहाँ रूप दस महीना रहा मेरे साथ सनातन। अच्छा है, अब तो कहते हैं अब यहाँ है ते गौड़ गेला है दस दिन दस, अभी दस दिन पहले वो गौड़ गया है। अच्छा, इसके बाद सनातन को कुछ पता नहीं है, महाप्रभु बता रहे हैं, तुमार भाई अनुपमेर होइल गंगा प्राप्ति, भाल छिल रघुनाथ दृढ़ तार भक्ति। देखिए एक गंभीर संवेदनशील स्थिति आ गया, कहते हैं कि तुम्हारे भाई अनुपम की मृत्यु हो गई, गंगा प्राप्ति हो गई, कितना अच्छा था, रघुनाथ के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति थी, रघुनाथ का भक्त था। सनातन गोस्वामी कहते हैं, सनातन कहे नीच बंसे मोर जन, और धर्म अन्याय जत अमार कुल कर्म। कहते हैं प्रभु हम तो नीच वंश में अधर्म और अन्याय में लगे हुए थे, एक मुस्लिम की नौकरी करना, गो ब्राह्मण के साथ द्रोह करने वाले व्यक्ति की चाकरी, ये नीच कर्म था। लेकिन प्रभु हेन वंश घृणा छाड़ी कैलो अंगीकार, ऐसे नीच व्यक्तियों को आपने स्वीकार किया, तुम्हार कृपाए वंश मंगल अमार, आपके कृपा से हमारे वंश का मंगल हुआ है, हम में क्या है। जब रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं कि निषाद राज को जब भरत और वशिष्ठ जी आलिंगन करने लगे, जब निषाद राज भगवान से मित्रता हुई थी गंगा पार करते समय, तो जब भरत जी आलिंगन करते हैं तो देवता लोग देख कर चकित हो रहे हैं। वशिष्ठ जी बताए कि देखो भरत, यह निषाद है केवट, लेकिन श्री राम ने इसको अपना मित्र बनाया है। तो भरत जी तो एकदम राम के समान स्नेह देने लगे, दौड़ कर आलिंगन कर लिए, और रामानुज भरत के साथ मिलन को देखकर देवता लोग चकित हो गए, बाप रे, जिसको छूने के बाद सचैल स्नान करना पड़ता है उसको भरत आलिंगन कर रहे, केवल आलिंगन ही नहीं, कि इतना रोए कि अभिषेक कर दिए। और भरत के आलिंगन से हटते ही जो वशिष्ठ जी को प्रणाम करने गए तो वशिष्ठ भी आलिंगन करने लगे। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि उस समय निषाद केवट विदेह हो गया, देह की शुद्ध ही भूल गया कि यह पोजीशन मेरा कैसे बढ़ गया। दिन रात निम्न कर्म करने वाला, मछली मारकर खाने वाला, वेद में अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, ब्राह्मणों के समाज में बैठ नहीं सकता, जीवन में कोई भजन नहीं किया, कौन ऐसी उपलब्धि हो गई कि आज वशिष्ठ जो जिसको कह दें वो ब्रह्मर्षि, नकार दें तो ना। ब्रह्मर्षि बनने के लिए विश्वामित्र को कितना परिश्रम करना पड़ा, और वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आलिंगन कर रहे हैं। तो उस समय निषाद विदेह अवस्था में सोच रहा है कि पोजीशन आया किसे, कैसे, क्यों। तुम विचार कर रहा है, राम किन्ह आपन जब ही थे, भयो भुवन भूषण तब ही थे। राम ने जब से मुझको अपना लिया है तब से मैं इस भुवन का सिंगार हूँ, भूषण गहना हो गया हूँ। तो यही सोच रहे हैं, हेन वंश घृणा छाड़ी कैल अंगीकार, तुम्हार कृपाए वंश मंगल अमार, हम में कोई खूबी नहीं है। सही अनुपम भाई शिशु काल ही थे, अब अनुपम टॉपिक बन गया, बचपन से ही रघुनाथ उपासना करे दृढ़ चीते, रात्रि दिने रघुनाथ नाम आर ध्यान, रामायण निरवधि सुने करे गान। बचपन से ही राम की भक्ति करता था अनुपम, और रामायण पढ़ता था, रघुनाथ का ध्यान करता था, रघुनाथ का नाम जपता था। तो एक दिन हम दोनों भाई रूप और मैं मिलकर कहे, आमी आर रूप तार ज्येष्ठ सहोदर, उसे बड़े भाई थे, आमा दोहा संगे तेह रहे निरंतर। तो
तो आमा सभा संगे कृष्ण कथा भागवत सुने तार परीक्षा कहनु अमी दुई जने। एक बार हम दोनों भाई मिलकर एक परीक्षा किए उसका। सुनह बल्लभ कृष्ण परम मधुर सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। हे बल्लभ सुनो, कृष्ण परम मधुर है, उनमें माधुरी ज्यादा है, और हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कृष्ण के नाम जपते हैं, और तुम राम भक्ति करते हो एक साथ ही। तो कृष्ण भजन करो तुम्ही अमा दुहार संगे, तुम भी कृष्ण की भक्ति करो ना। भागवत सुनो, तीन भाई एकत्र रहिम कृष्ण कथा रंगे, तीनों भाई एकत्र होकर कृष्ण कथा का आनंद लेंगे। तो जब बार बार हम दोनों भाई प्रेशर देने लगे तो हमने गौरव बुद्धि तो था ही, तो अमार दुहार गौरेर किछु फिरी गेल मन, थोड़ा सा मन तो बदला के भाई ये दोनों बड़े हैं प्रेशर दे रहे हैं। तोमा दुहार आज्ञा अमी केमने लंघिमु, दीक्षा मंत्र देह कृष्ण भजन करीमु, कैसे मैं आपका वचन टालू, आप जो कहिए जो मंत्र दीजिए वही करूँगा। तो हम लोग कहे ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और कृष्ण की आराधना करो, अपने घर में कृष्ण का डीटी रखो, राधा कृष्ण का मूर्ति उनको पूजा करो, सब सिखा दिए। स्वीकार कर लिया, गया घर, लेकिन यही कही रात्रि करे न चिंतन, रात को चिंतन करने के मने छाणी मु रघुनाथ रचरण, सोचने कैसे रघुनाथ को छोड़ूंगा। सब रात्रि क्रंदन करी, कैल जागरण, रात भर होता रहा और जागते रहा। प्रातः काल आमा दुहार कैल निवेदन, सुबह हमारे पास आया और आ करके रोते हुए कहने लगा, रघुनाथेर पाद पद्म, रघुनाथेर पाद पद्मे बेची आछे माथा, काड़ी अन पारो माथा पहु बड़ व्यथा। भैया यह जीवन यह सिर रघुनाथ को दे चुका हूँ, उनके पास से निकलना मेरे लिए बहुत कष्ट की बात है। कृपा करी मोरे आज्ञा देह दुई जन, जन्मे जन्मे सेऊ रघुनाथे रचरण। हाथ जोड़कर कहने लगा, दोनों भाई मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, जन्म जन्मांतर रघुनाथ का भजन करूं। रघुनाथेर पाद पद्म छड़ा ना न जाए, छाड़ी बार मन हैल प्राण फाटी जाए। ऐसा लग रहा है कि मैं राम को छोड़ दूंगा, यह सोचते ही कलेजा फट जाता है, लगता है अब विदीर्ण हो जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तबे आमी दुहे तारे आलिंगन कहिनु, साधु दृढ़ भक्ति तुम्हार कही प्रशंसिनु। हम दोनों भाई उनकी प्रशंसा किए, वाह, तो ये जो अनुपम का राम भक्ति है, इस वंश के ऊपर आपकी कृपा है प्रभु। तो इस चैतन्य महाप्रभु कहते, हाँ ऐसा ही नवदीप में एक भक्त था मुरारी गुप्त, पूर्वे आमी परीक्षा उतार यही रीत, मैं भी उसकी परीक्षा लिया था, और वास्तव में वह दृढ़ राम भक्त था, साक्षात हनुमान जी के ही अवतार थे। तो महाप्रभु कहते, सेई भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु र चरण, आ सेई प्रभु धन्य देना छाड़े निज जन। वह भक्त धन्य है जो अपने प्रभु को किसी अवस्था में नहीं छोड़ता है, और वह भगवान वह प्रभु धन्य है जो अपने जन को नहीं छोड़ते। दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, अगर दुर्भाग्य से किसी दूसरे जगह पर चला गया तो सेई ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धरी आने, वह ठाकुर धन्य है जो उसका शिखा पकड़ कर लाता है, इसीलिए शिखा मजबूत रखना चाहिए। छोटा शिखा पकड़ने में कहीं टूट गया तो दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, दुर्भाग्य से कोई दूसरे स्थान पर चला जाए तो सेई ठाकुर धन्य जेई चूल्हा धरे आने, चूल्हे धरे आने। तो भाल हैल तुम्हार यहाँ हैल आगमन, अब प्रसंग बदल गया, इहे घरे रह यहाँ हरिदास सने, आप यहीं रहिए। रूप गोस्वामी के लिए एक अलग व्यवस्था किए थे, थोड़ा सा अलग, हरिदास जी से अलग, क्योंकि वो ग्रंथ लिख रहे थे, पढ़ने लिखने वालों को थोड़ा सेपरेट जगह चाहिए, लेकिन सनातन को छोड़ दिया हरिदास जी के साथ, आप इनके साथ रहिए, अलग से कोई व्यवस्था नहीं कराए। रूप गोस्वामी के समय एक हरिदास के निकट ही एक अलग व्यवस्था किए उनको, चिंतन करते थे, ग्रंथ लिख रहे थे। उस समय दो दिव्य ग्रंथ लिखे 10 महीना में, विदग्ध माधव और ललित माधव, जिसको कल आप लोग सुने। तो अब तो दोनों एक साथ रहने लगे। कृष्ण भक्ति रस से तुहे परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ रहिए, आप दोनों सजातीय हैं, कृष्ण नाम में आपकी निष्ठा है, रहिए। तो इतना कहकर महाप्रभु चले गए और सनातन के लिए गोविंद के द्वारा प्रसाद भेजे। गोविंद उनका निजी सेवक था। तो प्रतिदिन महाप्रभु आते थे, उनसे इष्ट गोष्ठी करते, मिलते थे और प्रतिदिन उनको प्रसाद भेजवाते थे। एक दिन महाप्रभु आए और अचानक आते ही बोलने लगे, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए तो कोटि देह छड़े तबे छाड़ी ते पारीते। सनातन अगर देह त्याग करने से, सुसाइड करने से कृष्ण मिलते तो लाखों लोग एक दिन में ही सुसाइड कर लेते। देह त्यागे कृष्ण न पाए, पाइए भजने कृष्ण प्राप्त उपाय को नाही भक्ति बिने। देह त्यागने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण के प्राप्ति का उपाय है कृष्ण की भक्ति। और देह त्याग आदि यत सब तमो धर्म, तमो रजो धर्म कृष्ण ना पाई बे मर्म। तमो गुणी और रजो गुणी व्यक्ति कृष्ण के रहस्य को नहीं जानता है। भक्ति बिना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य नहीं ते नए। कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करना पड़ता है और बिना भक्ति के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, समझा। न साधयति माम जोगो, न साधयति माम जोगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। एकादश स्कंद भागवत में, एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के 20 नंबर का श्लोक है, भगवान उद्धव से बोल रहे हैं भागवत में। न साधयति माम जोगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपः त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भगवान कह रहे हैं कि मुझको प्राप्त करने में जोग समर्थ नहीं है, जोग साधन, और न सांख्य, न काउंटिंग करके तत्व विवेचन करना, न स्वाध्याय, न वेदों का पाठ, न तप, न त्याग, इससे मेरी प्राप्ति नहीं होती है। जथा जैसे भक्ति ममोर्जिता, और जथा भक्ति ममोर्जिता कहकर जैसे भक्ति से, तो इसका न साध्यति कहकर नहीं मुझको प्राप्त कर पाता है कठिन मार्ग। कोई मान लीजिए 120 मंजिला भवन है, बहुत ऊंचा, और उस पर जाने के लिए एक सीढ़ी भी है और एक लिफ्ट भी, तो किससे जाना पसंद करेंगे 120वें मंजिल पर? लिफ्ट से। सीढ़ी वाला भी है, चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं चाहेंगे अगर लिफ्ट की व्यवस्था है तो। नहीं लिफ्ट है तब तो लाचारी में सीढ़ी से जाएंगे। तो भक्ति लिफ्ट है और सब साधन स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है। योगा सीढ़ी पढ़ाया जाता है भगवद गीता कोर्स में, तो उसमें कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, कैसे कैसे, लेकिन सभी फ्लोर पर लिफ्ट है। अगर आप एकदम तमोवृत्ति में, पशु वृत्ति में भी हैं, तो वहाँ से भी लिफ्ट चालू होता है। वहाँ से सीधे 5वां नंबर दबाएंगे तो एकदम भक्ति पर। जैसे मृगारी जैसा व्यक्ति को भी नारद जी जैसा लिफ्ट मिला और तुरंत पहुंच चुका। रत्नाकर जैसे व्यक्ति को नारद जी के संपर्क में लिफ्ट से वाल्मीकि हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, लिफ्ट से। तो यह भक्ति योग है। देह त्याग आदि तमो धर्म पातक कारण, देह धर्म तमोवृत्ति है, साधक न पाए ताते कृष्ण चरण। देह त्यागने से कृष्ण चरण नहीं मिलता है। सनातन अवाक है, सब महाप्रभु बोलने लगे, सर्वज्ञ महाप्रभु उनका प्लानिंग जान गए। प्रेमी भक्त वियोगो चाहे देह छाड़ी थे, जानते हो कृष्ण के वियोग में जब प्रेम हो जाता है कृष्ण से, तो कृष्ण का दर्शन नहीं पाने के कारण साधक छटपटाता है, कैसे दर्शन करूं कैसे दर्शन करूं। लेकिन प्रेमे कृष्ण मिले से ना पारे मरीते, एक संतोष रहता है कि कभी भी कृष्ण को प्राप्त करूंगा, भले शरीर बदलना पड़े, इस जीवन में ना हो दूसरे जीवन में हो, 10 दिन 20 दिन 25 दिन या 2 महीना 4 महीना बाद कभी तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे दूसरे बार प्राप्त करेंगे, मर नहीं पाता है। यह है प्रेम का लक्षण। गाढ़ा अनुरागेर वियोग ना जाए सहन, गाढ़ अनुराग के कारण वियोग सहन नहीं होता है। ताते अनुरागी वांछे अपन मरण, फिर भी वो सोचता है मर जाना ही अच्छा है, लेकिन मरता नहीं है। जस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिरिवात्म तमोपहत्ते ही यरिहं बुजाक्षण लभे अभवत् प्रसादम जहिया मसुन व्रत कृक्षाक्षत जन्म भीष्यात्। देखिए रुक्मिणी जी के पत्र का ये श्लोक है। रुक्मिणी जी कृष्ण के लिए पत्र लिखती, हे कमल नयन, हे प्रियतम श्याम सुंदर, शिव जी जैसे उमापति महापुरुष अपने तमोगुण को अज्ञान को भगाने के लिए आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करते हैं, आपके चरण रज को चाहते हैं, आपके चरण धोन को प्राप्त करके विभोर हो जाते हैं गंगा को प्राप्त करके। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपने आयु को कम करने के लिए व्रत करूंगी, तपस्या करूंगी। यदि इस जीवन में आपकी कृपा मिल गई तो बहुत बड़ा सौभाग्य, और नहीं भी मिल पाई तो सैकड़ों बार शरीर धारण करूंगी और व्रत कर करके, कृच्छ व्रत करके बार बार शरीर छोड़ूंगी, लेकिन आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी, किसी दूसरे को नहीं। यह संकल्प। यरिहम बुजाक्षण लभे भवत प्रसादम, यदि नहीं आपकी कृपा मिल पाया तो जह्याम असुन, इस असुन इस प्राण को त्यागूंगी, व्रत कृच्छात व्रत कठोर तपस्या करके, जन्म भी स्यात सत जन्म भी साथ, सैकड़ों सैकड़ों जन्म अगर लेना पड़े फिर भी मेरे प्रियतम तो आप हैं और कोई दूसरा नहीं। आपके सिंह के भाग को सियार न छूने पाए प्रियतम, मैं श्री कृष्ण सिंह की पत्नी हूँ, श्री कृष्ण सिंह की, मैं शिशुपाल जैसे सियार की नहीं। अगर कदाचित वह मेरा स्पर्श कर लिया, करने के लिए निकट आ गया तो उसके पहले शरीर छोड़ दूंगी। तो यह है रुक्मिणी जी का विचार। अब गोपियों का विचार देखिए। सिंचांग नस्तरा मृत पूर केड़ हासावलोक कल गीत क्षयाग्निम नोचे द्वयम विरह जाग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। हे प्रियतम, गोपियां कह रही हैं कि तुमने अपनी हंसी युक्त चितवन और मधुर बात से हमारे हृदय में वासना उत्पन्न कर दिया, अपने मिलने की एक अग्नि उत्पन्न कर दिया जिससे मैं जल रही हूं मिलने के लिए। लेकिन हे प्रियतम, अब तुम अपने ओठों की अमृत धारा से हमें चूम कर इस अग्नि को बुझाओ, तुम्हारा कर्तव्य है। हमारे हृदय में जो आग जल रही है उसका जल बाहर नहीं है, तुम्हारे अधर सुधा है, तुम कृपा करके ऐसा करो। अगर नहीं करोगे तो हे प्रियतम, हे मित्र, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे विरह के कारण हमारे हृदय के भीतर जलते हुए अग्नि हमारे शरीर को जलाकर खाक कर देगी। तपस्या करूंगी और तुम्हारे प्रगाढ़ चिंतन में ध्यान में निश्चित रूप से तुम्हारे चरणों को प्राप्त करके रहूंगी। ऐसा नहीं है कि तुम तिरस्कार कर दो उपेक्षा कर दो तो छोड़ दूंगी। ध्याने न याम पदयो पदवीम सखे थे। हे सखे, हे प्रियतम, हे मित्र, मैं आपको प्राप्त करके ही मानूंगी, चाहे शरीर क्यों न छोड़ना पड़े। कई बार तो ऐसा नहीं कि बस सुसाइड कर लेना है हो जाएगा काम, ना कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, कुबुद्धि छोड़ो, अच्छी रात पावे तबे कृष्ण रो चरण, बहुत जल्दी कृष्ण मिल जाएंगे, श्रवण कीर्तन करो। और जो मन में ग्लानी कर रहे हो कि मैं मुसलमान की नौकरी किया, नीच जाति हो गया, उसका जूठा हुका पी लिया, ये वो, अरे नीच जाति नहीं कृष्ण भजन रजोग्य, और सतकुल विप्र नहीं भजन रजोग्य। नीच जाति में जन्म लेने से भजन की अयोग्यता नहीं हो जाती, और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से भजन के योग्यता नहीं प्राप्त हो जाती, नीच वंश में जन्म लेने से अयोग्यता नहीं होती, और सतकुल विप्र में जन्म लेने से भजन की योग्यता नहीं हो जाती। जानते हो, जेई भजे सेई बड़, अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं, जो भजन करेगा वो कृष्ण का है। और एक विशेष बात, दीने रो अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ा अभिमान। जानते हो, बल्कि दीनहीन निम्न वंश में जन्मने वालों को विशेष चांस है। जानते हैं, धनी धन में, धनियों में तीन दोष होता है और गरीबों में एक, इतना भारी अंतर है। धन धन के साथ गरीब में क्या, धन की लालसा गरीब में भी होती है और धन की लालसा धनी में भी होती है, दोनों सेम है। लेकिन जो धनी है उसके बाद उसको प्राप्त हो गया धन, तो एक अहंकार एक्स्ट्रा हो जाता है, धन की लालसा ज्यों की त्यों है, बल्कि गरीब से ज्यादा है, विशेष प्लानिंग है उसकी। वो तो केवल खाने चबाने की चिंता में रहता है, और धनी लोग तो योजना बना बना कर भरे रखते हैं, भला कंप्यूटर चल गया नहीं तो रूम भर जाता था फाइल से। तो योजनाओं के फाइल बड़ा रहता है, भरा भरा। तो धन और धन का अहंकार, धन अपने आप में दोष है, धन की लालसा, धन और धन का अहंकार, तीन दोष धनियों में होता है। तो कम से कम एक दोष है, धन चाहता है, बस धन की तृष्णा है। और कुलीन लोग, पंडित लोग, धनी लोग अभिमानी होते हैं, वे नहीं भजन करते। तब फिर चैतन्य चरितामृत अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इसलिए भी है कि प्रमाण के साथ सब चीज कहा जाता है। देखिए, तुरंत एक श्लोक प्रस्तुत करें। विप्रा द्विषद गुण जुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। प्रहलाद महाराज की स्तुति का एक श्लोक है। कहते हैं, ब्राह्मण 12 गुण से युक्त हो, 6 गुण ब्राह्मणों में होना चाहिए एकदम नितांत। वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना और देना, ये 6 गुण ब्राह्मणों का है। लेकिन इन 6 गुणों से दूना 12 गुण, 12 गुण से युक्त यदि ब्राह्मण हो और संयोग से पादा रविंद विमुखात, भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो उससे श्रेष्ठ स्वपच है, कुत्ता का मांस खाकर हजम करने वाला। स्व तलाबी स्व, स्व का अर्थ होता है संस्कृत में कुत्ता, और पच माने हजम करने वाला, पचा लेने वाला, कुत्ता खाकर हजम कर ले, तो स्वपच माने चंडाल। चंडाल वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति भी वरिष्ठम, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, 12 गुण से युक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्यों? कि मन्ने तदर्पित मनो बचने हितार्थम, अपने मन को, अपने बाणी को, अपने शरीर को कृष्ण में अर्पित किया है। प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान, लेकिन अहंकार के कारण ब्राह्मण अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता और वह सारे परिवार को पवित्र कर लेता है। यह है, तो देखो, भजनेर मध्य श्रेष्ठ 9 विध भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, भजन के बीच में नवधा भक्ति है और उससे कृष्ण मिलते हैं, और तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नवधा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ है भगवान के गुणगान करना। संकीर्तन तीन प्रकार का होता है, एक मृदंग करताल हारमोनियम के साथ, एक होता है संख्या संकीर्तन गिन गिन कर जो माला जपते हैं, और तीसरा होता है भगवान के गुणों का वर्णन करना जैसे अभी किया जा रहा है, एक कीर्तन कीर्ति का बखान। तो निरपराधे नाम लेते पाए प्रेम धन, निरपराध होकर नामापराध न हो नाम जपा जाए तो कृष्ण प्रेम मिलता है सनातन। ये तो सुनी सनातनी होइलो चमत्कार, प्रभु न भाई मोर मरण विचार, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है। सर्वज्ञ प्रभु जानकर निषेध कर दिए, लेकिन क्या करूं सर्वज्ञ कृपालु तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, जैसे न चाहो तैसे नाती जैन काष्ट यंत्र, मैं तो कठपुतली हूं प्रभु जैसे नचाना हो नचाइए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव, मोरे जी आईले तुम्हार किवा होवे लाभ, मैं तो एक नीच व्यक्ति मुझको जीवित रहकर क्या प्राप्त होगा आपको। प्रभु कहे क्या प्राप्त होगा, तुम स्वतंत्र हो, अब लिए क्लास जबरदस्त। प्रभु कहे तुम्हार देह मोर निज धन, तुम्हारा यह देह अपना नहीं है, तुम ही मोरे करिया छे आत्मसमर्पण, तुमने मेरे चरणों में अपने शरीर को दिया है, और परेर द्रव्य तुम ही के ने चाह बिना श्रीते, दूसरे का धरोहर विनाश करने का तुम्हारा अधिकार है। धर्मा धर्म विचार की वा ना पारक करीते, धर्म और अधर्म पर विचार किया है, तुम्हार देह मोर प्रधान साधन, तुमने अपना देह मेरे प्रति समर्पण किया है, नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़कर मेरे चरणों में आया है, और मैं इस शरीर से कुछ प्लानिंग करके रखा हूं क्या करना है, और तुम बीच में योजना बना दिया आत्महत्या का। ए शरीर साधि मामू बहु प्रयोजन, मेरे पास भी फाइल पड़ा है क्या करना है इस शरीर से, तो क्या करना है जानते हो, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धार वैष्णव कृत्यार वैष्णव आचार। इस शरीर से भक्त का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, कृष्ण प्रेम तत्व का क्या स्वरूप है, इस सबको बतलाना है। वैष्णवों का क्या बिहेवियर है, क्या आचरण है, ये सिखाना है तुम्हारे द्वारा। कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उधार और वैष्णव शिक्षण, देखो मेरे प्लानिंग क्या क्या है। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, मेरा सबसे प्रिय स्थान है वृंदावन और मथुरा, तहां जत धर्म चाही करते प्राचरण, उसको राजधानी बनाकर सारे विश्व में भक्ति का प्रचार करना है। अरे मैं इस शरीर से नहीं कर सकता, मातार अज्ञाय आमी बसी नीलाचले, मैं माता के आज्ञा के बंधन में हूं, नीलाचल में पड़ा हुआ हूं। तहा धर्म सिखाई ते नाही निज बले, अपने बल से अपने इस शरीर से मैं वृंदावन में भक्ति का स्थापना नहीं कर पा रहा हूं। आ ये तो सब धर्म ये सब कर्म आमी ये देह करीमु, ये सारा प्लानिंग इसी शरीर से करना है सनातन शरीर से। तहा छाड़ीते चाह तुम के मने सही मु, उसी को तुम नष्ट करना चाहते हो, मैं कैसे सह लूंगा। हरिदास जी सुन रहे हैं और सनातन दो हैं, तीसरा महाप्रभु आज किसी को नहीं लेकर आए। तबे सनातन कहे तुमाके नमस्कार, तुम्हार गंभीर हृदय के बुझीते पार, प्रभु आपको नमस्कार है, काष्टेर पुतली जेन कुह के नचाए, आपने न जाने पुतली कीवा नाचे गाए, मैं तो कठपुतली हूं जो नचाने वाला है उसके हाथ में सूत्र है, जैसे घुमाए वैसा नाचता है, जैसे नचाना हो नचाइए प्रभु, लेकिन हम समझ नहीं रहे कैसे नाचे केवल नचाए से ही नहीं जानी, वो नहीं जानता है। हरिदास से महाप्रभु कह रहे हैं संबोधन करके, हरिदास जी थोड़ा विचार कीजिए, दूसरे के संपत्ति अगर किसी के यहाँ रख दे तो उसका क्या हक बनता है उस पर, उसकी रक्षा करनी चाहिए ना। देख रहे हो ये क्या प्लान बनाकर रखा है, परेर अस्थाप्य द्रव्य केह न खाए बिलाए, दूसरे के रखे हुए संपत्ति को कोई खाता और नष्ट नहीं करता है, निषेध यह यहाँ जे ना करे अन्याय, आपके पास है आप इसको देखिएगा ध्यान से, ऐसा गलती ना कर पावे, आपको निषेध करिएगा, ऐसा अन्याय ना होने पावे। हरिदास कहते हैं, हरिदास कहे मिथ्या अभिमान करी, तुम्हार गंभीर हृदय बुझीते ना पारी। प्रभु अगर कोई सावधान न रहे तो धोखा हो जाएगा, लोग समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं, लेकिन ये मिथ्या अहंकार है। आपके गंभीर हृदय को समझना किसी के बस की बात नहीं है। कौन कौन कर्म तुम्ही करो, कौन द्वारे, कौन कौन कर्म किसके द्वारा करेंगे, तुम्ही ना जनाइले के जानीते ना पारे। अगर आप न बताएं तो कोई जान भी नहीं सकता है। एतादृशी तुम्ही हारे करिये छे अंगीकार, इस प्रकार सनातन को तुम अपना बनाए हो। ये तो सौभाग्य यहा ना है कहार, ऐसा सौभाग्य तो समस्त गौर परिकरों में किसी को नहीं है जो सनातन को है। तब महाप्रभु मध्यान्ह करने के लिए दोनों का आलिंगन किया, चल दिए। तो सनातन ने कहे हरिदास करी आलिंगन, सनातन गोस्वामी से हरिदास जी आलिंगन करके कहते हैं, तुम्हार भागीर सीमा ना जाए कथन, सनातन आज मैं जान गया तुम्हारा कीमत। बाप रे, तुम्हार देह को हेन प्रभु मोर निज धन, तुम्हारे देह को प्रभु अपना संपत्ति कह रहे हैं। तुम्हार संभाग्यवान नहीं कौन जन, तुम्हारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। यहां तक महाप्रभु बोल दिए कि निज देह जे कार्य ना पारे करीते, से कार्य कराइबे तुम्हार से मथुराते। जो काम अपने शरीर से महाप्रभु नहीं कर सकते, वो काम सनातन तुम्हारे शरीर से कराएंगे। निश्चित रूप से वही शरीर धन्य है जो ईश्वर के काम में आ जाए, भगवान के काम में आ जाए, वही सिद्ध है। जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्ध होए, तुम्हार सौभाग्य ही कहिनु निश्चय। बाप रे, क्या क्या काम कराएंगे ये भी बतला दिए। भक्ति सिद्धांत, शास्त्र आचार निर्णय तुम्हार द्वारे कराई में बुझी आशय, जो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरा देह व्यर्थ चला गया, हरिदास जी रोने लगे, महाप्रभु के किसी काम में नहीं आया। अमार यही देह प्रभु कार्जे न लगी लो, भारत भूमि ते जन्म यही देह व्यर्थ है लो। भारत जैसे पवित्र भूमि में जन्म लेकर भी जो भगवान की सेवा में नहीं लगा, व्यर्थ हो गया। मैं तो किसी काम का नहीं, मेरा शरीर किसी काम का नहीं है। हरिदास जी ठीक कर रहे हैं। अब देखिए सनातन का तर्क, कहते हैं सनातन कहे तुम्हार सम केवा आछयान। हरिदास जी आप जैसा कौन है? महाप्रभु गणे तुम्ही महाभाग्यवान, आ महाप्रभु के भक्तों में सबसे बढ़कर है। किस तरह से? हरिदास जी को चुप कर दिए, बुद्धि में बृहस्पति हैं, आगे बोल रहे हैं। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, आज से ही निज कार्य प्रभु करें तुम्हार द्वारे। महाप्रभु नाम की प्रचार करने के लिए आए, वो काम आपसे करा रहे हैं। और प्रत्यह करी कर तीन लक्ष्य नाम संकीर्तन, सवार आगे कर नामेर महिमा कथन। जो आता है उसको नाम की महिमा बताते हैं। तीन तीन लाख नाम जप करते हैं 20-22 घंटा। जानते हैं क्या होता है संसार में? आपने आचारक के हो ना करे प्रचार, अब प्रचारक करे ना के हो ना करे आचार। दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग अपने आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। नृसिंह जी के स्तुति में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रायेण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा, मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा। कहते हैं कि हे नृसिंह देव, दुख इस बात की है कि लोग आपसे बहिर्मुख है। कहने कि नयो द्विजय पर दुरत्य वै तरण्या, तद्विर्ज गायन महामृत मग्न चित्त। कहते हे नृसिंह देव, मुझको बैतरणी से नरक से डर नहीं है। क्यों? सारा दुनिया टरती है, गाय का पूंछ पकड़ कर लोग बैतरणी पार करते हैं। जीवन भर चाहे कुछ भी करें, मरते समय गाय का पूंछ पकड़वाते हैं, छू कर दान कर दिया तो बैतरणी पार। सब लोग डरते हैं, भले एक गाय को ही 50 बार पूंछ छुआ जाए, लेकिन गंगा की तट व्यवस्था है, पंडित लोग करके रखे हैं बैतरणी पार करने का। लेकिन तुमको क्यों नहीं डर भय है बैतरणी से? कहते तद बीर्ज गायन महामृतमग्न चित्त, मैं आपकी महिमा को गाने में मग्न हूँ, आनंदित हूँ, मुझे भरोसा है कि आपके गुणगान बैतरणी को पार कर देगा इतना आसानी से कि कहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं भव बारिधि गोपद इवतरहीं। जो भगवान की कथा को कहता है, सुनता है और सुनकर आनंदित होता है, वो भव समुद्र को ऐसे पार करता है जैसे बरसात के दिन में गाय के बछड़े से कोई गड्ढा बन जाए छोटा गोपद, वैसा भव सागर सिमट जाता है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं गो भव बारिधि गोपद ही उतर रही, आसानी से कितना गोपद पार हो गया पता भी नहीं चलता, प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक बात का टेंशन है, प्रभु क्या हो गया, अब क्या समस्या है? कहते सोचे ततो विमुख चेत से इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद बहतो विमूढ़। उन गधों के लिए चिंता है, प्रभुपाद गधा अर्थ करते हैं मूढ़ के, उन गधों के लिए चिंता है जो आपसे विमुख होकर भार बहन करते हैं। क्यों बासमती राइस ढो रहे हैं, क्यों ईंट ढो रहे हैं, क्यों सीमेंट ढो रहे हैं, जीवन में एक दिन भी भात नहीं मिलता, चावल क्यों ढो रहे हो? प्रभुपाद कहते हैं धोबी लोग कपड़ा धोते हैं, आज तक एक बनियान नहीं मिला, एक जंगिया नहीं मिला, नंगे घूम रहे हैं। गधा ईंट ढो ढोकर मकान बना देते हैं लेकिन घर नहीं मिला, क्यों इतना बर्डन ढो रहे हो? ऐसे संसारिक लोग जो विमुख होकर इतना परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए मैं चिंतित हूं। तो मानो नृसिंह देव कहे रे प्रहलाद तू टेंशन मत ले, बहुत से प्रीचर हैं वो प्रचार करेंगे। तो कहते हैं नहीं प्रभु, प्रायण देव मुनया सो विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति बिजने न परार्थ निष्ठा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी चिंता में घर छोड़ देते हैं, मौन ले लेते हैं और बिजन में जहां कोई ना हो, एक भी आदमी ना हो, हिमालय की गुफा में जाकर मौन ले लेते हैं, बोलते ही नहीं। जब बोलेंगे ही नहीं तो सिखाएंगे क्या? मौनम चरन्ति बिजने न परार्थ निष्ठा, दूसरे की निष्ठा नहीं है तो अपने आचार्य के ना करे प्रचार, अपने आचरण करते हैं प्रचार नहीं करते, एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप है प्रचारक करे न कह ना करे आचार, दूसरा प्रचार तो करता है लेकिन अपना कोई आचरण नहीं करता। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को सिखाने में सभी गुरु हैं लेकिन अपना नहीं टाइट भजन होता, इस तरह के ढुलमुल प्रचार है। लेकिन आचार प्रचारे नाम कर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्ज। लेकिन आप आचरण भी करते हैं और सिखाते भी हैं, इसलिए आप जगत में सबसे बढ़कर हैं। हरिदास जी आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अब हरिदास कहाँ से बहस करे इस महाशास्त्री से, चुप हो गए। तो इस प्रकार दोनों आपस में बात कर रहे थे, कभी महाप्रभु आते कभी भक्तों को लेकर आते, एक से एक नमूना भक्त लाकर सनातन से मिला रहे हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद श्रीवास बक्रेश्वर वासुदेव मुरारी राघव दामोदर पूरी भारती स्वरूप पंडित गदाधर सार्वभौम रमानंद जगदानंद शंकर, सारे महंतों का नाम लिख रहे हैं। काशीश्वर गोविंदादि जत भक्त गण सबा सने सनातन कराइल मिलन, सबके साथ महाप्रभु मिलाते हैं। जथा जोग कराइय सवार चरण वंदन, सबके चरणों में वंदना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनके सद्गुण का प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार सनातन पुरी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एक बार की घटना है, वैशाख का तप्त धूप, मई महीना जून का ज्येष्ठ मास, वैशाखी मास से सनातन जब वहां थे तो रहे एक महीना, तो वहां पर महाप्रभु उनकी परीक्षा के लिए कहे कि सनातन टोटा गोपीनाथ में आओ, खबर भेजवाए एक व्यक्ति से, टोटा गोपीनाथ में दोपहर का लंच है, वहां भोजन के लिए आओ। तो सनातन वहां हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल भजन स्थली से एक शॉर्टकट रास्ता है, जब इधर से गंभीरा से होकर निकलेंगे शॉर्ट में जा सकते हैं, बाजार से होकर मार्केट से या मंदिर के निकट से रास्ता है, और दूसरा रास्ता है समुद्र से होकर। तो महाप्रभु यही देखना चाहते थे सनातन आ कैसे रहा है, सूचना दे दिए। तो सनातन आए, सुने खबर तो आए, प्रभु बुलाई छे आनंदित मने, मन में तो आनंद है महाप्रभु सूचना दिए हैं, लेकिन तब तो बालू कहते पाए पूरे तहा नहीं जाने, इतना भाव विह्वल है कि महाप्रभु किसे मिलना है, महाप्रभु बुलाए हैं। तब तो बालू के रास्ता से गए, दोनों पैरों में फोड़ा पड़ गया, दुई पाए भोसका होल, तभु गेला प्रभु स्थाने, भिक्षा करी महाप्रभु करिया छेन विश्राम, लेट भी हो गया, महाप्रभु खाकर विश्राम कर रहे थे, तो उनके लिए प्रसाद रखा हुआ था, जब दिया गोविंद प्रसाद प्रसाद पा लिए, तो महाप्रभु से जाकर बतलाए एक सनातन आया है। अच्छा, तो महाप्रभु पूछते हैं सब भक्तों के सामने, बहुत से भक्त हैं, दिखाना चाहते हैं सनातन की महिमा। प्रभु कहे कौन पथे आईला सनातन, सर्वज्ञ अंतर्जामी प्रभु सब जान रहे, किस रास्ते से आप आए। तो तेह कहे समुद्र पथे करिनु गमन। अच्छा, प्रभु कहे तब तो बालू कहते के मने आई ल, 12 बजे निमंत्रण कराए हैं तो बालू तो गर्म है ही। तो कहते कैसे आया, सिंह द्वारे पथ शीतल के ना आई ल, सिंह द्वार से आते तो ठंडा ठंडा रास्ता मिलता, मकान पेड़ मिलता, अब बालू के रास्ते से क्यों आए, देखो तुम्हारा पैर। सनातन कहे बहु दुख बहुत ना पाइनू, बहुत दुख नहीं हुआ है, अरे दिखाओ तो। तो पाए व्रण हैया छे तहा ना जानी लू, जब दिखाए तो फोड़ा पड़ गया है, सनातन को ध्यान भी नहीं है, सारे भक्तों को महाप्रभु दिखा रहे हैं, सिंह द्वारे आईते मोर नहीं अधिकार, मुझको सिंह द्वार से आने का अधिकार नहीं है, क्यों। तो विशेष ठाकुर तहां सेवकेर प्रचार, वहां से ठाकुर के सेवक रहते हैं, सेवक गता गति आते जाते रहते हैं, ताही अवसर तार स्पर्श हैला सर्वनाश हवे मोर, मेरा नाश हो जाएगा। तो महाप्रभु सुन सुन कर संतोष कर रहे, सुनी महाप्रभु मने संतोष पाईला, तुष्ट हैया तारे किछु कहिते लागिला। फिर महाप्रभु बोलते हैं यद्यपि हो तुम ही हो जगत पावन, सनातन तुम में तो वो क्षमता है कि सारे जगत को पवित्र कर सकते हो, तुमार स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण, इन ब्राह्मणों की क्या बात है, तुम्हारे स्पर्श से तो देवता और मुनिगण पवित्र हो सकते हैं, यद किंचित अगर उनमें कुछ दोष है तो सब नष्ट हो जाएगा, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा लंघन, मर्यादा रक्षण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु भूषण। देखिए यह सिद्धांत है महाप्रभु का, महाप्रभु चाहते तो 1 सेकंड में हरिदास को एंट्री मिल जाता मंदिर में, लेकिन भूल कर कभी नहीं कहे कि मंदिर जाओ। आज तो हम लोग केवल तिलक लगा लिए काबिल, बस जाएंगे, अगर गेट पर रोक दिए कि तुम लोग इस्कान वाले हो, पता नहीं कहां से आए हो, वो गोरा शरीर देकर कहते हैं विदेशी है, तो जीत करते नहीं हम यही कहे, देखिए मेरा आईडी एकदम जाने के लिए इतनी त्वरा है, लेकिन मर्यादा पालन है साधु भूषण, साधु के लिए सबसे सुंदर श्रृंगार है मर्यादा में रहना, भक्त का स्वभाव। मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यह लोक पर लोक दुई है नाश, 1 मिनट में छोटे वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति तिलक लगाया कंठी पहना तो ब्राह्मण के सिर पर चढ़ने लगेगा, क्या कमी है, वो तो ब्राह्मण के वंश में जन्म लेकर अंडा खाता है मांस खाता है, और तुमको मिल गया गोलोक का सर्टिफिकेट, ये अहंकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादा राखिले तुष्ट कैले मोर मन, भगवान कहते हैं कि वैष्णव को कुत्ता और गधा तक को नमस्कार करना चाहिए, एकादश स्कंद में। मर्यादा राखिले तुष्ट कैले मोर मन, तुम्ही जैसे ना करी ल करे कौन जन, तुमने मर्यादा का पालन करके शिष्टाचार का पालन करके मुझको संतुष्ट कर लिया, तुम्हारे अतिरिक्त इस उदाहरण को कौन दिखलाएगा सनातन, मैं इसीलिए तुमको इस समय बुलाया। ये तो बोली महाप्रभु तारे आलिंगन कैल, सारे भक्तों को शिक्षा दे दिए मर्यादा कैसे पालन किया जाता है, फिर कंडुरास वही आलिंगन, बार बार निषेध है न तबु आलिंगन करे आलिंगन, अंगाराशा गाय दुख पाए सनातन। तो इस प्रकार सनातन को बड़ा कष्ट होता था। प्रतिदिन महाप्रभु आते, प्रतिदिन स्पर्श करते, प्रतिदिन उनके शरीर में मवाल लगता है। एक दो महीना में ठीक होना चाहिए तो कई महीना तक वो घाव रहा। इसके बाद एक दिन जगदानंद पंडित आ गए सनातन के पास। जगदानंद कौन है? सत्यभामा के अवतार है। एकदम उनको अच्छा नहीं लगता था महाप्रभु का आलिंगन। तो एक दिन सनातन गोस्वामी से बात करते हुए कि पंडित जी क्या कहूँ अपना दुख, ये जबरदस्ती मुझको आलिंगन करते हैं। मैं यहाँ आया था अपना दुख दूर करने के लिए, सत्संग करने, महाप्रभु का दर्शन करने, और ये विपरीत हो रहा है। निषेध करने पर भी नहीं मानते हैं। प्रतिदिन उनके शरीर में मेरे शरीर का मवाद लगता है, मेरा अपराध बढ़ रहा है, कैसे निस्तार होगा? जिस निमित्त से मैं आया, हित निमित्त आइला मामी होइल विपरीत, की करीले हित है नारी निर्धारित। मैं निश्चय ही नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा हित कैसे होगा। तो जगदानंद कहते हैं, पंडित कहे, तुम्हार वास जोग वृंदावन, रथ यात्रा देखी तहा करह गमन। अब रथ यात्रा 10 दिन में आने वाला है, निकल जाना, यहाँ रुको ही मत। और तो महाप्रभु को समझाना कठिन था, सनातन को समझा दिए निकल जाओ। तो अगर प्रभु आज्ञा है छे, तुम्हारी दुई भाई, तुम दोनों भाई के लिए स्पष्ट आज्ञा है, वृंदावन वैसे तहा सब सुख पाई। तो आप आए, चरण दर्शन हो गया, जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा। अब आए हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 10 दिन बाद रथ यात्रा है तो जगन्नाथ मंदिर में भी नहीं जाते हो तो दर्शन कर लो, इसके बाद निकल जाना, ये प्रभु दत्त देश है, आप वहीं रहिए। तो कहे ठीक कह रहे हैं पंडित जी, यही करना पड़ेगा। कहा हाँ ठीक, एकदम पक्का यही करना, ठीक। तो कहकर चले गए। तो महाप्रभु आते हैं बाद में। तो जब हरिदास जी और सनातन प्रणाम करते हैं, फिर महाप्रभु आलिंगन के लिए दौड़ते हैं तो रोकते हैं, ना ना, सनातन भागे पीछे, महाप्रभु दौड़ कर आलिंगन, बलात्कार धरी प्रभु कैला आलिंगन, आलिंगन तो कर ही लिए। तब बोलते हैं सनातन, थोड़ा सा बल मिला है जगदानंद पंडित का। कहते हित लागी आई नी मुई हैल विपरीत, सेवा जोग नहीं अपराध करो नित नित, सेवा तो कुछ किया नहीं रोज अपराध हो रहा है। सहजे नीच जाति मुई दुष्ट पापा सय, मोरे तुम्हें छुईले मोर अपराध है। प्रभु मुझको आप छूते हैं, अपराध होता है, मैं क्या बताऊं? मेरे शरीर का मवाद रक्त आपके शरीर में लगता है, विभत्स स्पर्शिते ना घृणा ले से, यही अपराधे मोरे है सर्वनाशे। आपको मुझसे घृणा करनी चाहिए, आप मुझे मेरे आलिंगन कर रहे हैं। अब मैं रथ यात्रा देखकर निश्चित रूप से वृंदावन जाऊंगा उसी दिन। मेरे मन में तो एक दूसरा विचार था लेकिन आप उसको रोक दिए, तो चलो अब यह निर्णय तो ले ही लिया, क्योंकि जगदानंद पंडित से मैं सलाह लिया। जगदानंद पंडिते आमी जुक्ति पूछी ल, तो वृंदावन जाते ते उपदेश कैल। तो ये तो सुनी महाप्रभु सरोस अंतरे, महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए। जगनानंद कुल धैया करे तिरस्कार, काली कार बटुआ जगा ऐसे गर्भी है लो। महाप्रभु कर कल का नया बटुआ, बटुआ मने छोकरा, कल का छोकरा ज्ञान देने लगा, तोमा सवारे उपदेश करी ते लागी लो, आपको उपदेश करने का साहस उसमें आ गया। व्यवहारे परमार्थे तुम्ही तार गुरु तुल्य, व्यवहार में और परमार्थ में, उम्र में भी और ज्ञान में भी उसके गुरु के तुल्य हो, और तुम्हारे उपदेश ना जाने अपन मूल्य, तुमको उपदेश करा अपना कीमत नहीं समझ रहा है। इसके साथ इतना ही नहीं छोड़े, आगे कहते हैं, अरे अमार उपदेष्टा तुम्ही प्रमाणिक आर्ज, हमको भी आप उपदेश दिए थे, याद है कनाई नरशाला के समय, कि प्रभु इतने भीड़ के साथ मत जाइए, ये वृंदावन की परिपाटी नहीं है, अगर जाना ही है वृंदावन तो एक दो साथ लेकर जाइए, ये रसभंग हो जाता है प्रभु। तो आप मुझको सलाह देने वाले हैं, अमार उपदेष्टा तुम्हें प्रमाणिक आर्ज, तुम्हारे उपदेश बालक करे जैसे कार्य। ये 2 दिन का बेटा ये उपदेश करने लगा, सुनी सनातन पाए धरी प्रभु र कहिल चरण पकड़ लिए। वाह जगदानंदेर सौभाग्य आज ते जानी ला, आज समझा कि जगदानंद आपका कौन है। इतना अपना असौभाग्य आज ही है ज्ञान, आज समझ में आया कि मेरे प्रति आपकी क्या मानसिकता है और जगदानंद के प्रति क्या। जगते नहीं जगदानंद सम भाग्यवान, इस संसार में जगदानंद जैसा कोई नहीं। क्या हो गया? जगदानंद पियाओ आत्मीयता सुधा रस। जगदानंद को अपना समझकर आप आत्मीयता का रस पिला रहे हैं। मोर पियाई लो गौर अस्तुति निम बिशिंदा रस, निशिंदा रस। कहते हमको मेरी गौरव मेरी स्तुति मेरी प्रशंसा करके आप मुझको कड़वा नीम पिला रहे हैं। आज ही जानी नाहीं मोरे आत्मीयता ज्ञान, मोरे अभाग्य तुम ही स्वतंत्र भगवान। लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता प्रभु आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जिसको जैसे स्वीकार करना हो कीजिए। मेरा तो दुर्भाग्य है कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। यदि गुरु शिष्य के सामने उसकी प्रशंसा करे तो यह अच्छी बात नहीं है। शिष्य की प्रशंसा या पुत्र की प्रशंसा परोक्ष में करे तो ठीक है, कोई बात नहीं चलेगा, सामने करने पर बिगड़ जाता है। एक बार रमेश बाबा कह रहे थे क्या कहूं, किसी की सेवा देखकर, बरसाना के रमेश बाबा जी, किसी की सेवा और भाव भक्ति देखकर मेरे मन नहीं मानता है, प्रशंसा कर देता हूं। और प्राय जिसकी प्रशंसा करता वो बिगड़ जाता है। और मैं सोचता हूं कि ना करूं, लेकिन किसी किसी सेवा से इतना हृदय खुश होता है कि कर देता हूं, करने के बाद तो सिर पर चढ़ने लगता है। एकदम बाबा का सर्टिफिकेट मिल गया, अब मुझसे कौन है, तो अब क्या करूं कैसे करूं समझ में नहीं आता। तो कहते हैं आज मेरी प्रशंसा किए तो महाप्रभु ये सुनकर, सुनी महाप्रभु किछु लज्जित है मने, सनातन के बाद से महाप्रभु लज्जित हो गए। तार संतोषिते किछु बोले न बचने। देखो ऐसा ऐसी बात नहीं है सनातन, जगदानंद प्रिय हमार नहे तुमा हैते, तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय नहीं है। लेकिन मर्यादा लंघना आमी ना पारो सहिते, मर्यादा का उल्लंघन किया कहां तुम्ही प्रमाणिक, फिर प्रशंसा करें शास्त्र प्रवीण, कहां जगा कालिकार बटुआ नमीन। फिर कह रहा है कहां तुम प्रमाणिक शास्त्र प्रवीण पंडित, और कहां का नव बटुआ अभी पढ़ने वाला कालिकार बटुआ, कल का नया बालक है। आमा के बुझाइते तुम्ही धरन शक्ति, तुम हमको भी समझाने की शक्ति रखते हो। कतर ठाई बुझिया छे व्यवहार भक्ति, कई बार अनुभव किया हूं, एक बार नहीं, तुम सामान्य व्यवहार और भक्ति दोनों के विषय में दृढ़ हो। ऐसा नहीं फर्स्ट क्लास मैनेजर भी हो, मैनेजमेंट वाले थोड़ा कम भजन कर पाते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन दोनों में दक्ष हो। आमा के बुझाइते तुम इधर शक्ति, तुम्हारे उपदेश करे ना जाए सहन, तुमको उपदेश कर दिया जगदानंद यह सहन नहीं हुआ, आते वो तारे आमी करे भर्षण। बहिरंग ज्ञान तुम्हार ना करिय स्तवन, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे गुणे स्तुति कराए जैसे तुम्हार गुण, तुम्हारे गुण की स्तुति करे जैसा तुम्हारा गुण है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे फ्लेटरी कर रहा हूं या कोई मिथ्या प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं। देखो अब असली बात बताता हूं, तुम्हार देह तुम्ही करब विभत्स ज्ञान, तुम सोच रहे हो कि मवाद वाद है तो ये विभत्स है, नहीं स्पर्श करना चाहिए, लेकिन तुम्हार देह हमारे लागे अमृत समान। अब महाप्रभु अपने स्टेज पर आ गए। अप्राकृत देह तुम्हार प्राकृत कभू नए, तुम अप्राकृत भक्त हो इसलिए तुम्हारे भक्ति के प्रभाव से तुम्हारा देह अप्राकृत है, तथापि तुम्हारे ताते प्राकृत बुद्धि है। ये भगवान की व्यवस्था है। देखो प्राकृत हैलेल तुम्हार बपू नाही उपेक्षिते, भद्रा भद्र वस्तु ज्ञान नाही प्राकृते। कहते देखो यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता तो भी मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर पाता, तुम इतना भजन किए हो कि तुम्हारे अंदर अप्राकृतत्व तो आ गया है। देखो किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तु न कियत, वाचो दितम तन्नृतम मनसाध्यात्मेव च, कृष्ण से संबंध न रखने वाली जिस वस्तु की अनुभूति हो जाती है उसे माया समझना चाहिए। जिसका संबंध कृष्ण के साथ है वह माया नहीं है। शब्दों द्वारा उच्चारित या मन द्वारा अनुमत अनुभव किए गए एक भी भ्रम यथार्थ नहीं होते। भ्रम भ्रम है, चूंकि माया है यथार्थ नहीं, इसलिए जिसे हम बुरा सोचते हैं जिसे अच्छा सोचते हैं उसमें कोई अंतर नहीं, सब प्राकृत है। जब हम परब्रह्म की बात करते हैं तो ऐसी कल्पना लागू नहीं होती। यहाँ तक माया की परिभाषा तुलसीदास जी बहुत सुंदर देते हैं। किसको माया कहते हैं, कहाँ तक माया है, तो कहते हैं कि गो गोचर जहां लग जाई तहां सब माया जानहूं भाई। गो माने इंद्रियां और गोचर माने उसका चरागाह रेंज। जहां तक इंद्रियों का पकड़ है, आंख जहां तक देख सकती है, कान जो सुन सकता है, मन जहां तक सोच सकता है, मन भी प्राकृत है, तहां सब माया जानहूं भाई, वो सब माया है। एक लाइन में सब खत्म कर दिए। मतलब भगवान अप्राकृत अधोक्षज है, वे इस प्राकृत इंद्रियों के पकड़ के बाहर है। इसीलिए अध अक्षज इति अधोक्षज, जो हमारे अक्षज ज्ञान है, इंद्रियों जनित ज्ञान है, वो जिनको पकड़ने में हमेशा पिछड़ जाती है उनको अधोक्षज कहते हैं, नहीं पकड़ पाती है। गो गोचर जहां लग जाई तहां सब माया जानहूं भाई, सब माया है। तो इस प्रकार अगर द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। इस संसार में कुछ अच्छा कुछ बुरा लगता है, सब भ्रम है। लेकिन ये परमार्थ में लागू नहीं होता। विद्या विनय संपने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन। लेकिन ऊपर लेवल पर जो है वो सब जगह भगवान को दिखता है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण या गाय हाथी या कुत्ता चंडाल सब में वो ईश्वर को देखता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय जुक्त हेतु चते जोगी समलोष्टास्म कांचन। आमी तो सन्यासी, अमार सम दृष्टि धर्म चंदन पंकेते अमार ज्ञान होय सम। हम सन्यासी हैं, यह सोना है, रुपया है, पत्ता है, ऐसा भेद नहीं। चंदन में और कीचड़ में अंतर नहीं है। ऐसा नहीं हाँ ये बढ़िया जगह है रहने लायक है, खराब है। यही लागी तुमा त्याग करिते ना जुआई, इस सिद्धांत पर मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर पाया। घृणा बुद्धि करी यदि निज धर्म जाए। अगर मैं तुम्हारे शरीर से घृणा करता तो हमारा संन्यास धर्म नष्ट हो जाता। हरिदास कहे प्रभु जे कहिला तुम्ही, ये बाह्य प्रतरण नहीं मानी आमी, ये बाहरी बात है, मैं इसको नहीं मानता। हरिदास जी कहते हैं बाहरी प्रवचन मत कीजिए, असली चीज बताइए। ये क्या बात कर रहे हैं कि मैं घृणा नहीं कर रहा हूं, मेरा धर्म संन्यास नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बाहरी बात मत कीजिए, मैं इसको नहीं स्वीकार करता। आमा सबे अधमे जे करिया छे अंगीकार, दीन दयालु गुण तुमार तहाते प्रचार। क्यों झूठे प्रशंसा कर रहे हो हमारे जैसे नीचों को स्वीकार करके? हे दीन दयालु, तुम्हारी ये विशेषता है कि हमारे जैसे नीचों को भी अपना बनाए हो। तब महाप्रभु भाव बदलते हैं। प्रभु हासी कहे सुनो हरिदास सनातन, देखो अब ओरिजिनल बात कर रहा हूं। तत्वतः कमी तो कही तुम्हार विषय जैसे मोर है, जैसे तुम लोगों के विषय में जैसा मेरा मन है, मेरी मानसिकता को सुनो, एकदम असली बात सुन लो, एकदम हृदय की बात बता रहा हूं। तुम्हारे लाल्य अपना के लालक अभिमान, यह है ओरिजिनल बात। मैं अपने को तुम्हारा पालक समझता हूं और तुम दोनों को अपना बच्चा। तुम्हारे लाल्य, तुम हमारे लाला हो, और अपना के लालक अपने को पिता या माता मानता हूं। लालक केरल लाल नहीं दोष परिज्ञान, लालक जो लालन करने वाला है, पालन करने वाली माँ को अपने बच्चे के अमेध पर भी घृणा नहीं होता। गोद में लेकर भोजन करती है, शौच कर देता है, उसको घृणा नहीं करती, उसको साफ करती है, खाती है, भोजन भी करती है लेकिन बच्चे में दोष दृष्टि नहीं करती। कभी कभी तो उसके साड़ी में बेड में जहां तहां उसका मल भी लगा रहता है, फिर भी वो चंदन के समान है। अपनार है मोर अमान्य समान, तुम्हार लाल अपना के लालक अभिमान, लालक के लाल नहीं दोष परिज्ञान। अपना के है मोर अमान्य समान, तुम्हार सवार करो मुई बालक अभिमान। तुम दोनों को मैं बालक समझता हूँ। माता जैसे बालक केर अमेध लागे गाय, माता के शरीर में जैसे बच्चे का मल लग जाता है, घृणा नहीं जन्मे और महासुख पाए, उसको सुख मिलता है, उसको उसके मल को धोने में वो दुखी नहीं होती। बच्चा शौच क्यों कर दिया? अगर दिन भर एक दो दिन शौच न करे तो दुखी हो जाएगी, इसको कुछ हो गया। उसको समय पर पेशाब करना चाहिए, शौच होना चाहिए। अब बाथरूम में थोड़े जाएगा छोटा बच्चा, वो तो माँ के गोद में माँ के बेड पर कभी भी पेशाब कर देगा। तो लाल्या मेध लाल केर चंदन सम भाई, बच्चे के लाल्य जो है लाला, उसके पेशाब शौच चंदन के समान माँ को लगता है। सनातनेर क्लेद अमार घृणा ना उपजाए, सनातन के इस मवाद से मुझको घृणा नहीं हुआ। हरिदास कहे तुम ईश्वर दयामय, तुम्हार गंभीर हृदय बुझत न जाए। वासुदेव गलत कुष्टि ताते अंग क्रीड़ामय, वासुदेव कुष्टि के शरीर गल रहा था, उसके शरीर से कीड़े गल गल कर कुष्ठ गलित कुष्ठ हुए थे, और वो उनका दर्शन करने के लिए आया। उनके शरीर से जब कीड़े जो अंग में थे और कभी कभी गिर जाते थे नीचे, तो नीचे से उठाकर कहाँ जा रहे हो, क्या खाओगे, मर जाओगे, इसी में रहो। उठाकर नीचे गिरे हुए कीड़े को वासुदेव कुष्ठी उठाते थे। दवा लगाने के तो कोई सवाल ही नहीं, दवा लगाने पर बेचारे मर जाएंगे। वो गल कर जो गिर जाते थे कभी कभी हिल कर, तो उसको उठाकर रखते, तुम्हारा भोजन यहाँ है, कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो। ये भाव था वासुदेव कुष्ठी का। वो महाप्रभु से मिलने आ गया और महाप्रभु देखे, दौड़ कर आलिंगन किए। उसके भाव आलिंगन करते ही उसका शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा, सारा घाव खत्म। एक आलिंगन में वासुदेव कुष्ठी का कुष्ठ समाप्त। और आलिंगिला कैला तारे कंदर्प सम अंग, बुझीते न पारी तुम्हार कृपा रतरंग। एक आलिंगन में गलित कुष्ठी वासुदेव का सारा रोग दूर हो गया। और यहाँ कई महीनों से आलिंगन कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहते हैं अरे हरिदास ऐसा मत कहो, प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभू न, वैष्णव का देह प्राकृत नहीं होता, अप्राकृत देह भक्त चिदानंदमय। जानते हो भक्त की महिमा कब बढ़ जाती है? जब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जेव ही जीव कृष्ण को समर्पित करता है त्यों कृष्ण उसको अपने समान बना देते हैं। सेई देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। मर्तो जदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्मा विचकीर्षितो मे, दयामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। यह भागवत का श्लोक है, एकादश स्कंद के 29वें अध्याय का। कहते हैं जब व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव मेरे आदेश को स्वीकार करता है, मुझे समर्पित करता है, भौतिक कार्य छोड़कर केवल मेरे लिए तत्पर हो जाता है, तब वो अमरता को प्राप्त करता है, अप्राकृतत्व को प्राप्त करता है और मेरे साथ प्रेम रस का स्वादन करता है। भगवान कहते हैं सनातन देह कृष्ण कंडू उपजाइया, सनातन के शरीर में कृष्ण कंडू उपजाकर हमारी परीक्षा लेना चाहे और मेरे पास भेज दिए, देखें चैतन्य घृणा करता है कि प्रेम करता है, मेरी परीक्षा थी। तो कृष्ण ठाई अपराध दंड पाईतम, तबे अगर मैं आलिंगन नहीं करता तब तो अपराधी सिद्ध हो जाता। पारिषद देह यही ना है दुर्गंध, प्रथम दिवस से पाइनु चतुः सम गंध। प्रथम बार आलिंगन किया तो ये बहुत सुंदर चतुः सम गंध मिला मुझको। चतुः सम का मतलब चंदन, कर्पूर, अगरू और कस्तूरी, इसको बराबर मात्रा में मिलाकर ये बनाया जाता है लेप। तो इसको कहते हैं चतुष्गंध, सुगंधित चंदन, अगरू, कर्पूर और कस्तूरी। तो ये मुझको ऐसा गंध मिला, वस्तुतः प्रभु जब ये कैला आलिंगन तार स्पर्श गंध हिल चंदन रसम। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु झूठ नहीं बोल रहे हैं, प्रथम आलिंगन के बाद सनातन के शरीर से मवाद तो निकलता था लेकिन वो दुर्गंध नहीं था, सुगंध था। प्रभु कहे सनातन ना मानी है दुख, तुम्हारे आलिंगने आमी भाई बड़ सुख, तुम्हारे आलिंगन से मुझको बड़ा सुख मिलता था। यही बत्सर तुम यहाँ रहे अमार सने, बत्सर रही तुम्हार आमी पठाइमू वृंदावने, एक साल यहाँ रहना है। ये तो बोली पुनः तारे कैला आलिंगन, इतना कहकर महाप्रभु आलिंगन फिर चलते चलते गए। अब देखिए फाइनल आलिंगन है वो कंडू, कंडू गेला अंग हिला सुवर्ण रसम। आज तो जो आलिंगन किए वो सारा घाव मवाद खत्म, सोने की तरह चमकने लगा शरीर। देखी हरिदास मने हिला चमत्कार, प्रभु रख कहे न ऐसे भंगी जे तुम्हार, कई महीनों से परेशान कर रहे हो आज ठीक किया। सही झारीखंडेर पानी तुमी खायो आइला, और सही पानी लक्ष्य यहाँ कंडू उपजाइया, तुमने झारीखंड में इस तरह के खराब पानी बनाया और वहां पिया पिया कर इसके शरीर में खुजली उत्पन्न कराया। कंडू करी परीक्षा कैला सनातने, यही लीला भंगी तुम्हार कहे नहीं जाने, कोई नहीं जाने, केहा नहीं जाने, ये तुम्हारी भंगी है, क्या करे है? दुही आलिंगिया प्रभु गेला निजालय, फिर दोनों को आलिंगन किए चले गए। प्रभु गुण कहे दुहे हैया प्रेममय, फिर आपस में बात कर रहे हैं दोनों आपस में, देखो इतने दिनों तक इस तरह से करते रहे आज सब कुछ ठीक कर दिए। तो इस प्रकार डोल यात्रा तक सनातन को रोके, और यहां पर फिर सनातन गोस्वामी बलभद्र भट्टाचार्य से मिले, कहे कि जिस जिस रास्ते से आप गए हैं उसी रास्ते से मुझे लौटना है। महाप्रभु के साथ आप गए थे, डायरी में नोट किए किस किस रास्ते से जाना है। तो महाप्रभु से सब कुछ लिखते हुए, सब कुछ लिख लिए, तैयार हो गए जाने के लिए। तो अब कह रहे हैं कि एक वत्सर रूप गोसाई गौड़े विलम्ब हिल, 10 महीना तो पूरी में रह गए, 2 महीना गौड़ और घूमने में, 1 साल गौड़ में जो कुछ अर्थ था, जो कुछ काम व्यवस्था था, सबको रूप गोस्वामी करके कुटुम्ब ब्राह्मण देवालय बांटी दी, जो धन संपत्ति था सब कुछ बांट दिए। अब अनुपम का बेटा जीव गोस्वामी थे, उनके लिए थोड़ा सा धन दिए और उसके माँ से कहे कि इस बच्चे को थोड़ा सा याना हो जाने पर संस्कृत पढ़ाना है और भजन कराना है, बस इससे कोई दूसरा अपेक्षा नहीं। सब मन कथा गोसाई करे निर्वाण, जो मन में बातें थी वो सबको पूरा किए और निश्चिंत होकर वृंदावन गए। तो दुई भाई मिले वृंदावन वास कैला, जब दोनों भाई वृंदावन में गए, सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु से विदा लेकर, यही मते सनातन महाप्रभु भक्त गणे सवारे मिलीला, से ही पथे चली जाए जे स्थान देखिया। जो बलभद्र भट्टाचार्य से लिख लिए रास्ता, वैसे महाप्रभु के सारे भक्तों से मिले सनातन, और जे जे लीला प्रभु पथे कैला से स्थाने, तहा देखी प्रेमावेश होए सनातन। अब इसी रास्ते से जा रहे हैं और उन स्थानों का स्मरण करके प्रेमावेश में वृंदावन पहुंचते हैं। वहां पर रूप गोस्वामी पहुंचते हैं, साथ में दोनों मिलते हैं। तो अब मिल करके दोनों भाई वृंदावन में कैसे निर्वाह कर रहे हैं, नाना शास्त्र आनी लुप्त तीर्थ उधारी ल, वृंदावन ने कृष्ण सेवा प्रकाश करी ल, जैसा महाप्रभु का आज्ञा था सब पूरा किए। सनातन ग्रंथ लिख रहे हैं, सनातन के ग्रंथ का नाम रख रहे हैं मुख्य ग्रंथ का, सनातन ग्रंथ कैला भागवतामृत, बृहद भागवतामृत, भक्ति भक्त भक्ति कृष्ण तत्व जानी तहा हैते। उसमें 2 पार्ट में किए हैं, एक में भक्त की महिमा, एक में धाम की महिमा। सिद्धांत तेरा सार ग्रंथ कैला दशम टिप्पणी, और भागवतम में दशम स्कंद पर टिप्पणी लिखे हैं, सब पर नहीं, केवल दशम स्कंद, और दशम स्कंद पर भी पूरा नहीं, केवल ब्रज लीला पर। कृष्ण लीला रस प्रेम जहाँ होते जानी, जार जर्थ ग्रंथ कैला तहा के करे गणन, मदन गोपाल गोविंदे सेवा प्रकाशन। मदन मोहन जी की सेवा प्रारंभ किया और रूप गोस्वामी गोविंद जी का, रूप गोस्वामी कैला भक्ति रसामृत सिंधु सार, कृष्ण भक्ति रसे जहाँ पाई ते विस्तार। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिखे, उज्ज्वल नीलमणि नाम ग्रंथ कैला आर, राधा कृष्ण लीला रस जहाँ पाइये पार। और इनके ग्रंथों को लिख रहे हैं रूप गोस्वामी के। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, नाटक जुगल, कृष्ण लीला रस तहाँ पाई वे सकल। सबसे ज्यादा ग्रंथ जीव गोस्वामी लिखे हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी से ज्यादा रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखे हैं। कहते हैं दान केली कौमुदी आदि लक्ष्य ग्रंथ कैल, सब ग्रंथ को लिख करके अपने लघु भ्राता बल्लभ का पुत्र अनुपम के पुत्र जीव को महापंडित बनाने की इच्छा थी रूप गोस्वामी की। कहते तार लघु भ्राता श्री बल्लभ अनुपम, तार पुत्र महापंडित जीव गोस्वामी नाम। वो सब कुछ छोड़कर 13 वर्ष की अवस्था में, अब कम से कम 6-7 वर्ष का बच्चा क्या भजन करेगा, 12-13 वर्ष तक उनकी माँ सेवा की, इसके बाद वो आ गए। सर्व तजी तेहो पाछे आइलो वृंदावन, तेहो भक्ति शास्त्र बहु कैल प्राचरण, भागवत संदर्भ नाम कैल ग्रंथ सार, 6 संदर्भ लिखे जीव गोस्वामी, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत सिद्धांतर जहाँ पाई वेर पार, गोपाल चंपू 6 संदर्भ जीव गोस्वामी के ग्रंथ हैं। और इस प्रकार महाप्रभु की आज्ञा कि सारे परिवार वृंदावन में भजन करे, तो उनके द्वारा आज्ञा पा करे तीनों रह रहे हैं साथ में। फिर जीव गोस्वामी को अनुभव हुआ कि संस्कृत के कम ज्ञान है, ऐसे तो रिफरेंस तो खोज देते थे, तो फिर वहाँ से मुड़ कर वाराणसी आए और वाराणसी में फिर संस्कृत पढ़कर फिर वृंदावन गए। जीव रूप गोस्वामी कहे कि पढ़ लो जाकर बनारस, संस्कृत पढ़ कर आओ, तो पढ़ कर गए और पढ़ करके अभी 13 वर्ष की अवस्था में आ गए थे। फिर जब गए तो अब रह गए और वहाँ रह करके भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन किए। तो कह रहे हैं कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कि तार आज्ञा आइला आज्ञा फल पाइला, शास्त्र करी कतकाल भक्ति प्रचारीला, यही 3 गुरु और रघुनाथ दास, ये 3 मेरे गुरु हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। यहाँ सबार चरण बंदो जार मुई दास, मैं इन सबके चरणों की वंदना करता हूँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ क्योंकि मैं इनका दास हूँ। यही तो कहिनु पुनः सनातन संगमे, प्रभुर आशय जानी जहर श्रवणे। मैं संक्षेप में सनातन गोस्वामी के 3रे मिलन की कथा किया, प्रभु का आशय समझकर आप इसको सुन लीजिएगा। इसे सुनकर मैं महाप्रभु की इच्छा समझता हूँ, जैसा मुझसे लिखवा दिए वैसा लिख दिया, लेकिन चैतन्य चरित की एक विशेषता बताता हूँ। चैतन्य चरित्र यही इच्छु दंड सम, चरवण करीते है रस आस्वादन, तो इच्छु दंड की समान है, गन्ना का दंड, गन्ना, और जो ऊपर से उसको चूसते आते हैं तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना मिठास बढ़ता है नीचे जड़ की तरफ। तो चरवण करीते है रस आस्वादन, तो इस चैतन्य चरितामृत का जितना चरवण करेंगे, जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे रस की अनुभूति होगी, एक विशेष बात कहते हैं। तो श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित कह रहे हैं। तो परम करुण करुणा पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु कि परम अनुकंपा से श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की महती कृपा से हम लोग चार दिन इनके लीलाओं का आस्वादन किए, यथाशक्ति कहने का प्रयास किया। इसमें यत किंचित आपको दोष का अन्वेषण हो रहा हो, कुछ कमी रह गई हो, तो वो मेरा निजी दोष है, ये चैतन्य चरित्र का दोष नहीं है, अपना दोष है, इसको क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि आप सहज कृपालु वैष्णव हैं, आपका स्वभाव है क्षमा करना, और साथ ही आपसे कृपा की अपेक्षा है। आप अपनी कृपा से विशेष रूप से कृपा कीजिए, मेरी मति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन दिव्य लीलाओं में रमे और उनका अभीष्ट जो कृष्ण प्रेम है उसको धारण कर सकूं, यथा संभव जैसा वो चाहें वैसा दूसरे को भी दे सकूं। तो इस प्रार्थना के साथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए यह सत्र संपन्न होता है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राम।